हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। आप अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना के साथ और आज मेरे साथ मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन।
हाय फ्रेंड्स, आई एम नितिन उपल, आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।
हेलो, आई एम सुमित सरावत, आई एम डूइंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।
हाय, हाउ आर यू, आई एम दिग्विजय सिंह शर्मा, डूइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।
Hi, I'm Salil Chawla, doing BTech from Manav Rachna International University.
Hi, I'm Sahil, pursuing BTech Mechanical from MRC, Faridabad.
तो भाई इन सब ने बताया कि ये मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि इनसे जानती हूँ ये अपने घर का इतना प्यारा और खुशगुवार माहौल को छोड़कर यहाँ हॉस्टल की लाइफ में पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है इन्हें?
बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
जी हाँ, तो आप अपने घर से यहाँ पर पढ़ने आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या है ऐसी फैसिलिटीज जो आपको लगता है यहाँ आपको मिली हैं जिससे आप एंजॉय कर रहे हैं?
एक्चुअली टोटल फ्रीडम, कोई रोक टोक नहीं है पेरेंट्स की, जब मर्जी उठो जहाँ मर्जी जब मर्जी जाओ, कुछ पढ़ाई के लिए नहीं कोई फोर्स करता ज्यादा।
जी हाँ, तो दोस्तों नितिन का ये मानना है कि भाई कोई रोक टोक नहीं है इनके ऊपर, मम्मी पापा को कोई प्रेशर नहीं है, जब दिल करता है तब ये उठ सकते हैं और जब दिल करता है तब ये आराम से सो सकते हैं। पर क्या आपको लगता है वाकई हॉस्टल लाइफ में इतनी फ्रीडम मिलती है? जानते हैं चलिए सुमित से।
यस मैम, मिलती है, जिस टाइम चाहे उस टाइम उठेंगे।
तो क्या आपकी क्लासेस का कोई शेड्यूल नहीं होता है?
होता है, 12:30 से 6:30 तक।
जी,
और क्लासेस जाते हैं हम, जब मन करता जाते हैं, जब नहीं करता नहीं जाते।
तो आपको अटेंडेंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है?
होती है, लास्ट मंथ में पूरी क्लासेस लगाते हैं हम।
जी,
बाकी 4 महीने घूमते फिरते हैं।
जी हाँ, तो भाई देखिए ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये लास्ट के अगर 1 महीने में क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो इन्हें लगता है इनका पूरा सिलेबस ये कवर कर सकते हैं। दिग्विजय, आपसे जानना चाहूंगी।
यस मैम, बिल्कुल सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, लेकिन हम लास्ट के 1 महीने में नहीं, मैं 5-6 महीने पूरी आराम से क्लासेस लगाता हूँ और अटेंडेंस अपनी पूरी करता हूँ। लास्ट के 2-3 महीने ऐश करता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर्स भी खुश रहते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं।
सलील, आपका क्या मानना है?
मैं भी पूरे टाइम क्लास अटेंड करता हूँ और इसी वजह से नंबर भी अच्छे आते हैं, तो पेरेंट्स ज़्यादा कुछ करते नहीं है। और बाकी हॉस्टल के अंदर तो लाइफ अच्छी है ही, तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगह के मिलते हैं, इसकी अलग अलग जगह सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो सारे एक साथ मिलते हैं, तो फिर उसके बाद एंजॉय करते रहते हैं।
और आपका क्या मानना है साहिल?
आई टोटली डिसएग्री मैम फ्रॉम ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आई स्टडी अ लॉट, आई कैप्चर अ लॉट, आई यूज्ड टू डू थिंग्स अ लॉट एंड आई कीप गोइंग विद माय स्टडीज। एट द एंड इफ माय अटेंडेंस शॉर्ट आउट, I would like to, like, my teachers are there, but still they used to, like, if I'm a good student to them, then they used to give me the attending.
जी हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं जरूरी है कि आपको पूरे साल क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस आप ही के अच्छे भविष्य के लिए बनी है। चलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी नितिन से। नितिन, आपने कहा कि आप बहुत एंजॉय करते हैं, तो हॉस्टल लाइफ की एक एडवांटेज आप मुझे बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई लोग सुन रहे हैं आपको और आपसे कुछ ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर वो भी हॉस्टल में जाते हैं तो उन्हें क्या एडवांटेज मिलेगा, तो ये आप हमारे लिसनर्स को बताइए।
डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव पीपल, कंस्ट्रक्टिव माइंड से मिलते हैं
जी,
तो नई नई चीजें और पता लगती हैं।
मतलब बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हैं।
yes.
लेकिन क्या घर वालों को मिस नहीं करते हैं? मम्मी का प्यार, पापा का दुलार, कभी कभी उनकी डांट,
हमेशा वो तो हमेशा मिस करते हैं।
और ऑफ कोर्स आपके सिब्लिंग्स यानी आपकी भाई या बहन जो भी हैं, उनको आप मिस करते हैं?
यस मैम।
जी हाँ, तो मम्मी पापा को मिस करते हैं, भाई बहनों को मिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिलना हो पाता है, इस कारण ये लोग काफी खुश हैं। चलिए अब पूछते हैं सुमित से। सुमित, आप मुझे बताइए क्या एडवांटेज है हॉस्टल लाइफ में रहने का?
डिफरेंट पीपल से मिलते हैं, उनके साथ नई नई चीजें सीखते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं।
सुनने वालों को बहुत अच्छा और ग्लोरीफाइड लग रहा होगा कि भाई बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, घूमना फिरना होता है, आप नई नई चीजें कर सकते हैं, नई नई बदमाशियां भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं दिग्विजय का क्या मानना है, शायद इनके ख्याल थोड़े से अलग हो।
मैम, मौज मस्ती तो एक तरफ है ही, वो तो करनी पड़ती भी है और करते भी है, लेकिन साथ साथ इतने सारे दोस्त, कभी लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें जाना पड़ता है, कोई फोन करता है भाई आ जाओ करो। और
आपको लगता है कि अगर आप अपने घर पर होते और इस हॉस्टल में,
बाकी मम्मी पापा को तो बहुत मिस करते ही हैं मैम, वो तो बस सारा दिन याद आते हैं, बेशक कितना भी अच्छा दोस्त हो कोई भी हो, घर वाले तो याद आते ही हैं, भाई, छोटा भाई युवराज सिंह शर्मा।
जी, तो दिग्विजय कहते हैं वो अपने छोटे भाई को भी बहुत याद करते हैं, युवराज को। चलिए पूछते हैं सलील से, सलील आपका क्या मानना है?
मैम लाइफ काफ़ी अच्छी है मैम हॉस्टल के अंदर, मैम जाके सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो जब भी कॉलेज वगैरह जाते हैं सारे फ्रेंड्स साथ में होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, बाहर घूमने के जाते हैं सारे फ्रेंड्स होते हैं, और जिस टाइम आना होता है उस टाइम आते हैं, घर वाले रोक टोक करते हैं टाइमिंग के हिसाब से, ये रात को नहीं आना, और हॉस्टल के अंदर पास लेके जाते हैं या फिर कहीं बाहर स्टे कर लेते हैं पीजी वगैरह में, तो इसकी वजह से थोड़ी हॉस्टल में फ्रीडम लगती है, और बाकी पेरेंट्स को तो वैसे हमेशा मिस करते रहते हैं।
चलिए साहिल आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है हॉस्टल में रहने का क्या एक एडवांटेज है?
Biggest advantage here, ma'am, we have the freedom. Other than this, we can study a lot. The best thing about that, we have like grown-up development in us that we can study in our own schedule. In like mom की rock talk नहीं होती वहाँ पे, और parents का कुछ नहीं होता, हमें खुद ही देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, कहाँ तक हम स्टैंड कर पाएंगे लाइफ में।
जी हाँ, साहिल से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक चीज आपको जरूर मिलती है, अगर आप नॉर्मली घर में होते तो कभी रिश्तेदार आ रहे हैं तो कभी दोस्त आ रहे हैं, कभी किसी की रोक टोक कभी किसी की, लेकिन ये सारी डिस्टर्बेंसेज आपको हॉस्टल में नहीं मिलती है। आपके पास एक अपना कमरा होता है, अपनी एक स्टडी टेबल होती है, और आप अपने शेड्यूल से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। भाई चलिए बहुत सारी बातें हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो जानती हूँ अब मैं नितिन से कि क्या एक डिसएडवांटेज है हॉस्टल में रहने का।
काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह हमेशा आते रहते हैं रूम में, तो इतनी कंसंट्रेशन से स्टडीज नहीं हो पाती हैं वैसे।
अच्छा, कंसंट्रेशन से स्टडी नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का आना जाना लगा
रहता है। जाना लगा रहता है हॉस्टल में।
आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है क्या एक डिसएडवांटेज है हॉस्टल का?
वार्डन सर नहीं होने चाहिए हॉस्टल में।
जी जी, तो उससे तो फिर जिंदगी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रख पाएंगे।
रात को 1-2 बजे आते हैं, परेशान करते हैं, रूम खटखटाते हैं, चेकिंग कराओ ये कराओ।
अच्छा, पर आपको नहीं लगता है कि वो जरूरी है आपके अच्छे भविष्य के लिए?
मैम एक टाइम होता है हर एक चीज का, दिन में कर सकते हैं।
पर अगर आप बदमाशी रात को 1 बजे कर रहे हैं तो आपके हॉस्टल के वार्डन भी 1 बजे चेक करने आएंगे।
दूसरे बच्चे बदमाशी करते हैं, जो अच्छे बच्चे उनको पकड़ लेते हैं सर। फिर सुबह सुबह वार्डन सर आर के शर्मा सर के पास लेके जाते हैं, वो हमें सुनाते हैं, घर पे फोन होता है, घर वाले सुनाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है, जल्दी घर पे हो जाती है शीशा नहीं।
तो आपको लगता है कि अगर आप घर पे होते तो ये डिसएडवांटेजेस घर पे नहीं होती, मम्मी पापा ये रोक टोक नहीं कर रहे होते?
नहीं मैम, वो टाइम से करते ना,
वो रात को 1 बजे आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि अगर आप घर पे होते तो आई एम श्योर कि आप रात को 1 बजे वो बदमाशियां नहीं कर पाते। दिग्विजय आप बताइए आपको क्या लगता
है? बदमाशियों की जहाँ तक बात है, बदमाशियाँ थोड़ी बहुत तो चलती हैं, लेकिन मैम जो शरीफ बच्चे होते हैं हमारी तरह, हमारा नाम हर जगह आ जाता है, हम करते कुछ नहीं। मैम अगर किसी ने मैम मिरर को तोड़ दिया या दरवाज़ा तोड़ दिया या वार्डन सर के कोई ऊपर कुछ फेंक के मार दिया तो नाम आ जाता है वो बच्चे होंगे, उन्हें नहीं किया, वो नाम हमारा आ जाता है। मैम आज तक कभी कुछ नहीं किया फिर भी नाम आता है। एक डिसएडवांटेज और है मैम कि जहाँ भी जाना है अगर 5 मिनट के लिए बाहर कुछ खाने जाना है तो उसके लिए पास लेके जाओ, ये पास की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है मैम, ये नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करना मैम सर से कि नाम।
और मैम टीवी भी नहीं है मैम, कहाँ
पर दिग्विजय यहाँ पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो पास है ये कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है?
सिक्योरिटी
अपने घर से बहुत दूर है, ठीक है, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक हॉस्टल में रह रहे हैं, मान लीजिए आप 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं, शायद सिर्फ आप पिज्जा खाना चाहते हैं या फिर आप एक कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आप बाहर जाते हैं और आज का जमाना इतना खराब है कि आपको कोई किडनैप करके ले जाता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है अगर आपके पास पास है तो किसी न किसी को इस बात की जानकारी है कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी राहत के लिए वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं?
बिल्कुल मैम, ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए, लेकिन मैम इतनी दिक्कत खड़ी करते हैं टीचर्स, वार्डन सर और हो गए, वो कहते हैं कि नहीं यार अगर जैसे भूख लग रही है सर अभी 2 मिनट में जाना है आना है, वो तब भी नहीं देते पास, तो बहुत दिक्कत लगती है। वो तो होना चाहिए पास, तो वो मैम 7 बजे तक का ही टाइम होता है, रात को 7 बजे के बाद कहीं जा भी नहीं सकते, बाहर आ नहीं सकते, हम लड़कियाँ थोड़ी हैं मैम जो 7 बजे के बाहर आना जाना अलाउड नहीं है।
देखिए कहीं ना कहीं जब रूल्स बनाए जाते हैं तो उसमें जिस प्रकार बताया जाता है कि इक्वालिटी है, तो लड़की और लड़कियां सभी स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के रूल्स बनाए जाते हैं, तो शायद इस कारण आपको पासेस की प्रॉब्लम लग रही है। चलिए जानते हैं सलील से, सलील आपको क्या लगता है कि क्या एक डिसएडवांटेज है अगर आप हॉस्टल में आए हैं?
मैम वो कोई शीशे वगैरह तोड़ दिया तो मैम हॉस्टल के अंदर नाम सबसे पहले मैम मेरा आ जाता है, मैम नीचे ले जाते हैं, उनका वार्डन सर कहते हैं कि तुमने तोड़े, मैंने कहा मैम मैंने क्या कर दिया सर। फिर उसके बाद के शर्मा सर का फोन जाता है घर पे, फिर डीन सर के ऑफिस में लेके जाते हैं,
तो मतलब बदमाशी करने पर आपको लगता है कि अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो कई बार निर्दोष लोग भी पकड़े जाते हैं।
बिल्कुल मैम, यही होता है
मैम, सबसे शरीफ
मैम। एक्चुअली मैम, जो बदमाश लोग होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, वो काम कर लेते हैं, और जो शरीफ लोग बाहर बाथरूम करने आ रहे होते हैं, पानी पीने आ रहे होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और बस मैम दिक्कत हो जाती है।
तो देखिए, हॉस्टल लाइफ के जहाँ अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं कि आप मौज मस्ती कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी का रोक टोक नहीं है, वहीं पर एक ये डिसएडवांटेज है कि कई बार आप निर्दोष होते हुए भी पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाते होंगे। चलिए जानते हैं साहिल से। साहिल, आपको क्या लगता है, क्या एक डिसएडवांटेज है हॉस्टल में रहने का?
मैम, बिगेस्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पे कम्युनिटीज नहीं है।
जी,
गर्ल्स आर देयर, बॉयज आर देयर, दे आर नॉट, मतलब they cannot roam around in the hostel also, they cannot roam around here and there.
जी.
If they have groups like with the boys and girls,
जी.
they cannot talk to separately after 7 o'clock, because 7 o'clock is the closing time for the girls hostel.
जी जी.
And
तो क्या हम 7 बजे तक बहुत सारी बातें नहीं कर पाते हैं?
मैम,
क्लासेस होती है
college time, college time is there. So at that time, other than that, no campfires, nothing else. Matlab, you are there for 1 year and nothing is there in the hostel, nothing new happening.
But lekin koi na koi activity aapke college mein to hoti rehti hogi.
Ma'am, in college. The college it's there, but like hostel games, separate games, like hostel basketball team, other than that, hostel soccer team, other than this. They must be there.
अच्छा, तो आप चाहते हैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी बढ़ा दी जाए हॉस्टल के बच्चों के लिए?
स्पोर्ट एक्टिविटीज एंड मैम, अदर देन दिस कैंपफायर फॉर गर्ल्स एंड कॉमन रूम्स फॉर मेसेस एंड ऑल।
अच्छा, आप चाहते हैं एक ऐसा कॉमन रूम बनाया जाए जहां पर आप लड़के लड़कियां एक साथ बैठे?
नहीं, लड़कियां नहीं, बेशक लड़कों का कॉमन रूम अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन रूम तो होना चाहिए ना मैम हॉस्टल में, वो नहीं है।
दिग्विजय शर्मा ने जैसे कहा की कॉमन रूम जरूर होना चाहिए, तो भाई मेरे साथ है मानव रत्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के स्टूडेंट्स, और इन्होंने अभी रिसेंटली हॉस्टल ज्वाइन किया है। इनसे मैं जान रही हूँ कि हॉस्टल की लाइफ के क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं। भाई, आपको बहुत सारा फ्रीडम मिलता है क्योंकि यू आर ऑन योर ओन इन अ हॉस्टल, तो आपको क्या मानना है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को करनी चाहिए जब वो हॉस्टल में हो, और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए जब वो हॉस्टल में होते हैं?
जब हॉस्टल में होते हैं या बाहर भी?
जी हाँ, अपने घर से बाहर एक हॉस्टल में आप पढ़ने आए हैं तो आप एक इंडिविजुअल हैं, यानी आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जो भी हरकत करते हैं वो आपकी फैमिली को झलकाता है। इंसान का तभी पता लगता है कि भाई वो बाहर कैसा बिहेव कर रहा है, जिससे उसकी परवरिश का पता लगता है। तो आपको क्या लगता है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या ख्याल में रखना चाहिए जब वो हॉस्टल जाते हैं, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मिस्टेक तो स्टूडेंट्स यही करते हैं कि ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं।
जी,
इसके अलावा तो बाकी घूमना फिरना बाकी सब चीज़ें तो टॉलरेबल और सेंसिबल बनती हैं।
जी,
सिर्फ ड्रग एडिक्शन वगैरह ही थोड़ी गलत चीज़ें
हैं। अपने पीयर प्रेशर के में आकर अगर वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत है। आपका क्या मानना है?
मैं भी यही मानता हूँ कि
बुरी आदतों में नहीं पढ़ना चाहिए
और अच्छे काम करने चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए।
जी,
साथ के साथ मौज मस्ती भी होनी चाहिए।
जी,
पर लिमिट में,
मतलब मौज मस्ती करें लेकिन एक लिमिट में करें। चलिए दिग्विजय, आपका क्या मानना है कि क्या करना चाहिए बच्चों को?
ये बात बिल्कुल सही है मैम, बच्चे हॉस्टल में आके ड्रिंकिंग सिगरेट्स ये पीना शुरू कर देते हैं, ये होता है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए।
हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए वो पकड़े जाते हैं तो ऑफकोर्स फोन उनके घर पर जाता है, और फिर जब गार्जियंस को या पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है अपने बच्चों की हरकत पे। तो आपका मानना है कहीं ना कहीं कि बच्चों को इन गलत हरकतों में नहीं पढ़ना चाहिए?
यस मैम, नहीं पढ़ना चाहिए हरकतों में।
इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हॉस्टल में बच्चों को करनी चाहिए? डोंट्स तो आपने मुझे बताए, पर डूज आपने नहीं बताए कि क्या करना चाहिए हॉस्टल में। अपने पढ़ाई का एक डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल बनाना चाहिए,
बिल्कुल
पढ़ाई कर
सके।
अपनी क्लासेस को रेगुलरली करना चाहिए, बहुत ज्यादा मौज मस्ती की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।
यस मैम, दिग्विजय और मैं तो मैम क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं।
और मैम क्लास में हम तो हॉस्टल आगे मैम हमारा पर्टिकुलर शेड्यूल है कि मैम हम हॉस्टल से कॉलेज से अलग मैम 5-6 घंटे पढ़ते हैं।
जी जी, और मैम किसी कॉल आती है फोन मैम साइलेंट पे होता है, हम कुछ नहीं करते, हम उसे पढ़ते रहते हैं।
बाकी उससे अगर फोन ना भी उठाया जाए ना मैम कई बार पढ़ते हुए, तो घर वाले भी गुस्सा आ जाते हैं, फोन क्यों नहीं उठाते, कहीं घूमने गया होगा। मैम ये नहीं होना चाहिए, घर वालों को भी समझना चाहिए कि बच्चे पढ़ भी सकते हैं कभी कभी।
जी हाँ बिल्कुल, आपके घर वाले इसको सुनेंगे और मैं जानती हूँ कि उनको भरोसा हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं और आप उन सारी चीजों को निभा रहे हैं जो जनरली एक स्टूडेंट को निभाना चाहिए। भाई जानते हैं साहिल से, साहिल आपको क्या लगता है, क्या है डूज और डोंट्स जो एक हॉस्टल में कर बच्चों को करना चाहिए?
मैम प्रॉपरली डिसिप्लिन होना चाहिए, ड्रग एडिक्टेड नहीं होना चाहिए।
जी जी,
और मौज मस्ती भी करनी चाहिए थोड़ी।
मौज मस्ती तो करनी चाहिए लेकिन ड्रग एडिक्ट नहीं बन जाना चाहिए, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जब आप लोग हॉस्टल में होते हैं सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है आपको इन्फ्लुएंस करती है वो है आपका पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी आपके वो स्टूडेंट्स, आपके वो फ्रेंड्स जो आपके साथ रहते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं और वो आपको प्रोवोक करते हैं कुछ चीज करने के लिए, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की साइकोलॉजी है कि हम उसमें पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, जिस प्रकार संगत होती है इंसान वैसा बन जाता है। इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं बताइए मुझे नितिन।
कभी किसी के दूसरे के मतलब उसमें बहकावे में नहीं आना चाहिए
जी।
अपना अगर आपको मैं दूसरा अगर कोई बंदा कह भी रहा है कि आज कोई बात नहीं एक बार पी ले या कुछ कर ले ऐसा गलत
तो
काम,
इससे कैसे बचा जा सकता है नितिन? मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा एग्जांपल दें जिससे कि हम बच सकें, क्योंकि जनरली होता क्या है, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार सिगरेट पी के दिखा, तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली ये सोच करके कहीं अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मैं इंफीरियर तो ना हो जाऊं उससे, तो हम पी लेते हैं ये सोचते हुए कि ये तो सिर्फ एक बार।
खुद में सेल्फ डिटरमिनेशन होनी चाहिए कि ऐसे काम नहीं करने हैं।
खुद में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए मैम, बच्चे खुद में कॉम्प्लेक्स रखते हैं तभी ये काम गलत करते हैं।
अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए।
यस मैम, जिन बच्चों के साथ रह रहे हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए।
यस मैम।
और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि जिस प्रकार हम बैठकर कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए दोस्तों को, पर क्या आपको लगता है वो दोस्त वापस फिर आपके पास नहीं आएंगे?
छोड़ना इन द सेंस क्यों, वो जब वो गलत काम कर रहे हैं तो आप उनके पास ना खड़े हो, आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपको बुलाते हैं कि यार मेरी कोई दिक्कत है एक मिनट आना मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, तो आपको जरूर जाना चाहिए बेशक वो कैसा भी दोस्त हो। लेकिन मैम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पी रहा है कुछ आप उसके पास चले गए और बोला पी ले यार, कहते नहीं पीनी, कहते पी 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 और पी रहे हो आप, ये गलत है। जिस बच्चे में कॉम्प्लेक्स होगा इन्फिनिटी वो तभी वो करेगा, वो वरना तो करेगा भी नहीं।
अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, जब वो कर रहा हो उसके पास नहीं जाना, अपना बाकी टाइम जा सकते हैं घूम फिर सकते हैं, उसका साथ नहीं देना है उस गलत चीज़ों में।
ऑफ द ट्रैक नहीं होना चाहिए मैम, ऑन द ट्रैक रहना चाहिए।
जी हाँ, दिग्विजय ने कहा कि ऑफ द ट्रैक नहीं होना चाहिए, हमें अपने ट्रैक पे रहना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है आप सब ने ये कहा कि हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, पर क्या किसी ने ये कहा कि हमें उन्हें रोकना चाहिए? साहिल आपका क्या मानना है?
मैम रोकना तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए।
एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको गलती करते हुए सिर्फ आपसे दूर ना हो जाए, आपको सुधारने की कोशिश करे।
मैम ऐसे कई सुधारे भी हैं हमने, लेकिन मैम कई बच्चे जो एडिक्ट हो जाते हैं वो सुधरते रहिए।
यस मैम, फिर उन्हें मैम देना पड़ता है पेरेंट्स की का वो देना पड़ता है कि मैम कि पेरेंट्स की वैसे छोड़ो सारी चीज़ें, तब जाके हम थोड़े दिन
कई बार उन्हें थप्पड़ वगैरह मारना पड़ता है, मैम मार के बिठाना पड़ता है, बैठ जाने पीना कुछ भी नहीं करना,
कहना पड़ता है घर वालों पर कॉल कर देंगे तेरे नंबर ये है, फिर उसके बाद तब थोड़े दिन के लिए मानते हैं वो, फिर हमारे सामने
10-15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं मैम, फिर शुरू कर देते हैं मैम, ऐसे होता है।
पर आप मुझे बताइए कि इस एज में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इंसान की क्या होती है, जब आप अपने घर से बाहर आते हैं और आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आप पढ़ें, लेकिन पढ़ाई के अलावा जब एक हॉस्टल की जिंदगी आप जी रहे हैं, आप अपने घर पर नहीं है, तो किन चीजों का आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए?
मैम आप हर बच्चे से अलग ना रहो, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में कोई बच्चा मतलब 10 लड़के काम कर रहे हैं और आपको यार मैंने नहीं ये काम करना, तो वो उन 10ों से आपको दिक्कत बायकॉट हो जाओगे और दिक्कत करेंगे, वो 10 के 10 कहेंगे ये लड़का तो अजीब सा है ये करता है। मेन चीज़ तो ये है कि आपको सबके साथ मिलकर रहना पड़ता है। अगर 200 बच्चे कहते हैं कि स्ट्राइक करनी है, तो 200 में एक को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है कि वो अगर बेशक उसका दिल नहीं मानता इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो 200 के 200 तो उसे कहेंगे ना आज से इसे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इतने बड़े हॉस्टल के अंदर अगर 200 बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको आपकी माँ बाप वैसे भी दूर है, और फिर अकेले कमरे में आप कितना पढ़ोगे कितना लिखोगे, तो इसलिए सबके साथ इन्वॉल्व भी होना पड़ता है।
तो आपका ये मानना है कि सबसे दोस्ती करके और उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए?
यस मैम, हॉस्टल में तो मिलजुल के रहना चाहिए, जरूरी है।
आप सबका यही मानना है?
यस मैम।
अब चलिए आपसे एक सवाल कि भाई आप एक हॉस्टल में हैं, आप मानव रत्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आपने जब यहाँ पर एडमिशन लिया तो कोई ना कोई सपना जरूर देखा होगा आपकी आंखों ने, क्या है वो आपकी जिंदगी का एस्पिरेशन?
आई एम डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग
जी,
तो मेरा भी यही सपना है कि एक बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर बन के निकलूँ यहाँ से और अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए, ये घर वाले भी खुश हो जाएं।
जी हाँ, तो नितिन चाहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बने, जिससे उनके घर वाले उन पर वाकई बहुत प्राउड महसूस कर सकें, और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बने। सुमित आप क्या चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बनना
जी।
मैं जब कॉलेज में आया था तो सोचा था और सोच रहा हूँ अभी भी कि बन के जाना है यहाँ से।
सुमित ने कहा कि वो एक बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, और इसके कोई गुण आप देना चाहेंगे, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं?
रेगुलर क्लास अटेंड करना है
जी,
और अच्छी संगत रखना है
जी,
टाइम पे पढ़ाई करना है, खेलना कूदना सब सब टाइम से।
यानी हर चीज अगर आप बैलेंस तरीके से करते हैं तो ऑफ कोर्स आप वाकई जिंदगी में वो मुकाम पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। दिग्विजय आपका क्या मानना है?
एक्चुअली आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी भी कर रहा हूं और करता रहा हूं। चार साल के बाद एक ईयर भी करूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम दूंगा। मैं बीटेक कर रहा हूँ ताकि मुझे एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए अपनी, और अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं भी हो पाता तो मेरे पास टू साइड डोर ओपन हो जाएगा कि अगर होता है तो नहीं है तो बीटेक में भी जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं तो बीटेक कर रहा हूँ।
बहुत ही अच्छी सोच है दिग्विजय की कि वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी के हर मुकाम में हासिल करें और हर मुकाम में वो सक्सेसफुल हो पाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक आईएएस ऑफिसर भी बने और साथ के साथ बीटेक करके वो अपना दूसरा रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। साहिल आपका क्या? सलीम,
मैं तो जब से यूनिवर्सिटी में आता है कि सपना देखा था अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए
जी।
और मैम घर वालों ने पहले ही कह रखा था कि मैम अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए,
और आपको भरोसा है कि ये यूनिवर्सिटी आपको वो सब चीजें दे रही है, प्रोवाइड करवा पा रही है जिससे आप एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बन सके।
यस मैम, बाहर से मैम जो मैम बॉडी लैंग्वेज वगैरह के कोर्स वगैरह होते हैं मैम उसके अंदर थोड़ा सा लिंक करना है, बाकी मैम कॉलेज के अंदर मैम एजुकेशन बहुत अच्छी है और मैम बाकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी है, और फर्स्ट ईयर के अंदर से इसकी प्लेसमेंट शुरू हो गई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। TCS वाले आए मैम सेलेक्ट करके गए हैं मैम, उसी के अभी से शुरू हो गई प्लेसमेंट, तो मैम धीरे धीरे करके
बाहर जाने का मौका मिल रहा है। फिनलैंड के लिए बच्चे 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फिनलैंड जाने के लिए ताकि वो प्रोजेक्ट कर पाए इंजीनियरिंग बर्निंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर।
कितनी बेहतरीन बात बताई। साहिल आपका क्या एस्पिरेशन है जिंदगी में?
मैम टू क्रिएट अ थिंग विच हैज नेवर बीन क्रिएटेड बिफोर।
वंडरफुल, और ऐसी क्या चीज है आपके जहन में जो आप क्रिएट करना चाहते हैं?
मैम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार।
वाओ, तो यानी आप एक ऐसे इंजीनियर बनना चाहते हैं जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार को बनाएंगे, और मैं चाहूंगी कि आपका यह सपना जरूर पूरा हो। और जब आप वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार को बना लेंगे, उसको करेंगे, तो ऑफकोर्स आप यूनिवर्सिटी का ही नहीं हम सबका नाम रोशन करेंगे। और इसी बात पे आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना स्टूडियो।
थैंक यू मैम।
और दोस्तों आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।